ध्रुव ने शीघ्रता से कहा, वो मैंने ड्रेस ले ली है क्योंकि आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती हैं, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े ले लिए हैं और वो कपड़े मैंने गाड़ी में रखे हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक सूट लेकर आ जाता हूँ। इतना कहकर ध्रुव तुरंत गाड़ी की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर गहरी सांसें लेने लगी। बार बार उसे वो दृश्य याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठा दिया था। वो बार बार सोच रही थी कि उसे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो सोचने लगी, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने आकाश पर हाथ उठा दिया, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कितना गुस्सा हो गया होगा, अब क्या करूं। सोचते हुए रश्मि काफी परेशान थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि जल्दी से एक फाइल लेकर बैठ गई और उसे चेक करने लगी। ये आस्था की फाइलें थी। रश्मि आस्था के केस को अच्छी तरह से देखना चाहती थी। वो समझ चुकी थी कि अगर आस्था अरमान सिंघानिया की पत्नी है तो ये लड़की कितनी बड़ी हस्ती है और वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, इसलिए वो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी। फाइल देखते हुए उसने कहा, बोलो क्या काम है। उसे लगा था कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी काम से आया होगा, लेकिन काफी देर तक कैबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया। अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने आंखें उठाकर देखा। आकाश गुस्से से लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था। रश्मि हैरान रह गई। वो जल्दी से कुर्सी से खड़ी हुई और डरकर पीछे की ओर हटने लगी। आकाश आगे बढ़ने लगा और इस बीच वो अपने कैबिन की दीवार पर जाकर लग गई थी। आकाश सीधा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। रश्मि को आकाश से बहुत डर लग रहा था। उसने उसके दोस्तों के सामने उस पर हाथ उठा दिया था। उसे बहुत डर लग रहा था। रश्मि आकाश के बराबर से निकलने लगी, लेकिन आकाश ने अपना एक हाथ वहां रख दिया। जब रश्मि दूसरे साइड से जाने लगी, आकाश ने अपना दूसरा हाथ वहां रख दिया। रश्मि डर गई और अब दीवार के सामने वो रश्मि के बेहद करीब खड़ा था। वो बड़े ध्यान से रश्मि के चेहरे को देख रहा था। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक पल को आकाश की नजरें रश्मि के खूबसूरत लाल होठों पर ठहर गईं। रश्मि ने जल्दी से कहना शुरू कर दिया, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि आस्था अरमान सिंघानिया की पत्नी है। बाकी सबने जब उसे भाभी बोला और तुमने सिर्फ उसका नाम लिया तो मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारी पत्नी है और मुझे गुस्सा आ गया था। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुमने भले ही 2 साल पहले मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि इतने दिनों में तुम्हारा दिल बदलेगा और तुम मुझसे शादी करोगे। और जब मुझे लगा कि तुमने किसी और से शादी कर ली तो अपने आप ही मेरा हाथ उठ गया। आई एम सो सॉरी आकाश। आकाश के कानों तक रश्मि की एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसका ध्यान सिर्फ रश्मि के खूबसूरत लाल चेरी जैसे होठों पर था और जब रश्मि लगातार बोल रही थी, अचानक आकाश ने अपना सब्र खो दिया और उसने अपने होठों को रश्मि के होठों पर रख दिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। आकाश को रश्मि के हाथ उठाने पर गुस्सा था और ऊपर से रश्मि की बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया था, इसलिए उसने उसे बुरी तरह से किस करना शुरू कर दिया था। रश्मि अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी और वो काफी पैनिक हो गई थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। आकाश न केवल उसे चूम रहा था बल्कि उसने उसे काटा भी था और रश्मि के होठों से कुछ खून आकाश के होठों पर लग गया था। उसे किस करने में और भी मजा आ रहा था। लेकिन 15-20 मिनट बाद जब आकाश को एहसास हुआ कि रश्मि को सांस लेने में पूरी तरह से परेशानी हो रही थी, तब उसने रश्मि को छोड़ा और अहंकारी अंदाज में कहने लगा, आइंदा मेरे सामने मत आना, समझे तुम, वरना वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें इस तरह से मेरी जिंदगी में आने की कोई इजाजत नहीं है, और तुम हो कि तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है। ये सिर्फ उसकी सजा है, इस सजा को हमेशा याद रखना, समझे तुम। इतना कहकर आकाश रश्मि को चेतावनी देता हुआ वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी रश्मि ने अचानक आकाश का हाथ पकड़ लिया। उसके थोड़ा करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, अगर तुम्हें थप्पड़ मारने की इतनी हसीन सजा मिल सकती है तो मैं तुम्हें हर रोज थप्पड़ मारने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वो आकाश की ओर करीब चली गई, जिससे आकाश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो हैरानी से रश्मि की ओर देखते हुए कहने लगा, तुम पागल हो, यू आर मैड, यू आर जस्ट मैड, यू आर मैड। इतना कहकर आकाश उस कमरे से हड़बड़ाहट से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली। आकाश के बाहर निकलते ही रश्मि अपने होंठों को छूते हुए मुस्कुराने लगी। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आकाश से मोहब्बत कहीं ज्यादा गहरी थी और वो आकाश के उसे किस करने पर मुस्कुराने लगी। वहीं ध्रुव, आहान और सुमित, जो आकाश को ढूंढ रहे थे, जल्दी ही उनकी नजर आकाश पर पड़ी। आकाश दौड़ता हुआ लगभग उनके पास आ रहा था। ध्रुव हैरानी से आकाश की ओर देखकर कहने लगा, अरे आकाश भाई, क्या हुआ है आपको, आप तो इस तरह से भाग रहे हो जैसे कि आपकी इज्जत खतरे में हो और कोई आपकी इज्जत लूटना चाहता हो। ध्रुव के बोलने पर आहान ने उसे हाईफाई दिया और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आकाश चिढ़कर कहने लगा, जस्ट शट अप, अपनी ये फालतू की बात बंद करो तुम दोनों। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, फिर पलट कर कहने लगा, शायद तुम लोग भूल रहे हो कि हम इस वक्त अस्पताल में हैं। सुमित कुछ याद करते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, मैं तो एक बताना ही भूल गया, मैंने आस्था भाभी के कपड़े उनके कमरे में उनके वार्ड तक भिजवा दिए हैं और अरमान भाई ने कहा है कि हम सब लोग घर चले जाएं क्योंकि काफी देर हो गई है। दादाजी हम सबकी फिक्र कर रहे होंगे और आस्था के अस्पताल में होने की बात उन्होंने दादाजी से बताने के लिए सख्त मना किया है। वो लोग जल्दी ही वहां से निकलकर घर की ओर रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने अरमान को आस्था के लिए कपड़े दे दिए थे। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आस्था को कैसे बोले कि वो अपने कपड़े बदल सकती है। आस्था काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसने अपना ऑक्सीजन मास्क खुद से हटा दिया था। आस्था को मेडिकल फील्ड में इतना ज्ञान था कि उसकी हालत कैसी है वो खुद जानती थी। अब वो काफी स्टेबल महसूस कर रही थी। अरमान इस वक्त उसके कमरे में नहीं था, वो कपड़े लेकर वार्ड के बाहर खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि वो किस तरह से आस्था को कपड़े बदलने के लिए कहे। आस्था ने जल्दी से अपना दुपट्टा हटाकर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था कि कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं है, क्योंकि इतने समय से वो बेहोश थी तो वो देखना चाहती थी कि उसकी कंडीशन ठीक है या नहीं। उसके बाद वो दुपट्टा फिर से पहनना चाहती थी ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी को दिखाई ना दे। और आस्था ने दुपट्टा उतारकर अभी जस्ट साइड में रखा ही था और उसे लपेटने के लिए ही जा रही थी कि तभी अरमान उस वार्ड में आ गया। और अरमान की नजर जैसे ही आस्था पर पड़ी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। अचानक उसका शरीर गर्म होने लगा क्योंकि आस्था उस वक्त उसे बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही थी। कितनी देर तक अरमान उसे देखता रहा, खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश में उसका पूरा शरीर चल रहा था और बार बार उसका गला सूखने लगा। अरमान खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी आस्था को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। उसने तुरंत सामने देखा और अपने सामने अरमान सिंघानिया को देखकर आस्था बुरी तरह से डर गई। जोरों से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्या आपको अकल नहीं है? इस तरह से आप किसी लड़की के कमरे में कैसे आ सकते हैं? आपको नॉक करना चाहिए था। इतना कहकर आस्था ने अपने आप को दुपट्टे से ढकने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी, अरमान ऑलरेडी उसे देख चुका था। फिर आस्था के बोलने पर वो थोड़ा आगे बढ़ा और आस्था के बेहद करीब चला गया, इतना करीब कि आस्था की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थीं। आस्था को लगने लगा कि अरमान उसे किस करना चाहता है, इसलिए वो उसके करीब आया है और अपने आप ही आस्था की आंखें बंद हो गईं, उसे एहसास ही नहीं रहा। तभी अरमान ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़े आस्था के हाथ में रख दिए और फिर कहने लगा, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, समझे तुम? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक सर्वेंट हो, यू आर जस्ट माई सर्वेंट, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो सकती, समझ गई ना? अब फटाफट से ये कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि ने तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी कर दिया है। और हाँ, खबरदार, अगर तुमने घर पर जाकर दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश की, याद रखना, अगर तुमने दादाजी को कुछ भी बोला तो अरमान सिंघानिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इतना कहकर अरमान गुस्से से आस्था से ये सब कहता हुआ बाहर निकल गया और बाहर आकर उसे खुद पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो अभी और इसी वक्त ठंडे पानी से नहीं नहाया, अगर उसने अपने आप को थोड़ा ठंडा नहीं किया, तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि उस वक्त उसका शरीर चल रहा था। इसलिए जल्दी ही वो अस्पताल के अंदर वीआईपी वार्ड में चला गया और वहां के शानदार